अमन की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और एक कमज़ोर से लम्हे में वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। तभी कुछ लोग अमन और तारापरी पर वार करके उन्हें किडनैप कर ले गए और जंगल के बीचों बीच बने अपने एक छोटे से कबीले में ले गए। उन किडनैप करने वालों की बुरी नज़र तारापरी पर थी, लेकिन वे तारापरी को अपने सरदार से पहले नहीं छू सकते थे। तभी उस कबीले का सरदार, जो दिखने में किसी भयानक राक्षस से कम नहीं था, वो धीरे धीरे तारापरी की ओर बढ़ा। उस आदमी को देखकर तारापरी को परीलोक के उस राक्षस की याद आ गई जो हर रात तारापरी के जिस्म से खिलवाड़ करता था। सो तारापरी उस आदमी को देखकर कांप गई और डरकर अमन के सीने में अपना सिर छिपा लिया। अमन खामोशी से ये सब देख और सुन रहा था। अमन का सब्र अब खत्म होता जा रहा था। वो किसी भी वक्त एक भयानक जिन में बदल सकता था, क्योंकि उसका गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसने सोच लिया था कि वो पूरे कबीले को जिंदा निकल लेगा। सो जैसे ही उस कबीले के सरदार ने तारापरी को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी उसी कबीले का एक बुजुर्ग वहां आ गया और कुछ अलग सी भाषा में वो ना जाने उन लोगों को क्या क्या कहने लगा। और तारापरी और अमन ने नोटिस किया कि जितने भी वहां लोग थे, छोटे बड़े औरतें, सब के सब बड़ी ध्यान से उस बूढ़े बाबा की बात सुन रहे थे। और अचानक देखते ही देखते वे सब के सब उस बूढ़े बाबा के पैरों में गिर पड़े और वे 12 लोग और वो सरदार जिसकी तारापरी पर बुरी नज़र थी, वे सब के सब एक साथ तारापरी के पैरों में गिर पड़े। तारापरी बड़ी हैरानी से कभी अमन को देख रही थी तो कभी उस बूढ़े बाबा को। वो सोच रही थी, ना तो मैंने अपनी कोई शक्ति प्रयोग की है और ना ही अमन ने अपनी जिन वाली शक्ति प्रयोग की है, फिर ये सब अचानक से कैसे हो गया, कैसे इन लोगों का मन बदल गया। फिर एक एक करके वे सब लोग वहां से चले गए और केवल वो बूढ़ा बाबा वहां रह गया। तारापरी अपनी जिज्ञासा दूर करना चाहती थी, वो ये जानना चाहती थी कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। वहीं अमन ये सोच रहा था कि अगर कुछ पल और देर हो जाती तो उसका असली रूप सबके सामने आ गया होता। तब अमन बोला, बाबा आप कौन हैं और आपने इन लोगों से ऐसा क्या कहा जिससे इन्होंने अपना इरादा बदल दिया। तारापरी ने भी अमन की बातों में हाँ में हाँ मिलाई और बोली, हाँ बाबा, हम लोग जानना चाहते हैं ऐसा क्या किया आपने कि ये सब लोग इस तरह से रोने लगे और इन्होंने हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। तब वो बाबा हल्का हल्का मुस्कुराने लगे और बोले, भला आप दोनों को कैसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तारापरी और अमन उसकी बात सुनकर चौंक गए। वहीं तारापरी सोचने लगी, कहीं इन बाबा को तो ये पता नहीं चल गया कि मैं एक परी हूँ। वहीं अमन सोचने लगा, कहीं इस बाबा को ये तो पता नहीं चल गया कि मैं एक जिन हूँ। उन दोनों को इस तरह से सोचता देख वो बूढ़ा बाबा बात बदलते हुए बोला, बेटा मेरा मतलब था अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है और मैंने उन लोगों से क्या कहा, आप लोग आइए मैं आपको बताता हूँ। तारापरी और अमन एक दूसरे को देखने लगे और फिर उस बाबा के पीछे पीछे चलने लगे। वो बाबा उन्हें जंगल में ही थोड़ा आगे ले गया और एक बड़ी पुरानी सी गुफा के सामने रुका और बोला, आओ मेरे साथ। वे दोनों बिना कोई सवाल किए उस बाबा के पीछे पीछे चले गए। तब उन बाबा ने दो मूर्तियों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने उन लोगों को तुम दोनों की सच्चाई बताई है, इसलिए वे लोग शर्मिंदा थे। तारापरी और अमन सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। तब अमन बोला, आप कहना क्या चाहते हैं, हम दोनों की कैसी सच्चाई बताई आपने। तारापरी, हाँ क्या जानते हैं आप हमारे बारे में। तब उस बूढ़े बाबा ने कहा, आप लोग थोड़ा आगे बढ़कर इन मूर्तियों को देखिए, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बूढ़े बाबा की बात सुनकर तारापरी और अमन हैरान रह गए और आगे बढ़ने लगे। और जैसे ही उन लोगों ने उन मूर्तियों पर से कपड़ा हटाया, वे लोग हैरान हो गए और चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। तब अनायास ही तारापरी के मुंह से ये निकल गया, ऐसा कैसे हो सकता है। अमन भी यही बोला, हाँ ये सब क्या है और ऐसा कैसे हो सकता है। तब अमन बूढ़े बाबा के पास गया और बोला, ये सब क्या है, जवाब दो हमें। वे दोनों मूर्तियां किसी और की नहीं बल्कि तारापरी और अमन की ही थीं। उन दोनों मूर्तियों में वे दोनों तारापरी और अमन कहीं के राजा रानी लग रहे थे। बड़ी ही खूबसूरती से उन मूर्तियों को बनाया गया था। उनकी मूर्तियां यहां कहां से आ सकती हैं और क्यों, ये सवाल उन दोनों के मन में घर कर चुके थे। तब वो बूढ़ा बाबा बोला, बेटा ये दोनों मूर्तियां आप दोनों ने खुद अपने हाथों से बनाई थी, ये आप दोनों के प्रेम की निशानी है। क्या, तारापरी शौक हो गई थी, प्यार व्यापार तो वो कुछ मानती ही नहीं थी। वो अमन के साथ थी तो केवल एक बच्चे के लिए, वरना आदमियों से तो उसे इतनी नफरत हो चुकी थी कि वो किसी आदमी का साया भी बर्दाश्त ना कर सके। तब तारापरी किलक कर बोली, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, भला मैं ये मूर्ति क्यों बनाऊंगी, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, जरूर आप कोई जादूगर हैं जो हमें यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तारापरी ने अपना अंदेशा जाहिर करते हुए कहा और अमन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तब वो बूढ़ा व्यक्ति हंसने लगा और बोला, भला मैं क्या आप लोगों को बंदी बनाऊंगा, मैं तो खुद गुलाम हूँ आप दोनों का, अभी आप दोनों को कुछ याद नहीं है लेकिन इसी जन्म में याद भी आएगा और जल्दी ही याद आएगा, फिर देखना इन मूर्तियों को ढूंढते हुए आप लोग यहाँ वापस आओगे। और उस बूढ़े बाबा ने तारापरी के ठीक सामने खड़े होकर कहा, जिस काम के लिए आप यहाँ आई हो वो काम इन मूर्तियों के बिना अधूरा होगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा। तारापरी उस बूढ़े बाबा की बातों के बारे में सोचती रह गई और फिर वे दोनों एक एक नज़र और उन मूर्तियों पर डालते हुए वहां से निकल गए और वे लोग सीधा उस कबीले में पहुंचे जहां सब लोग पहले से खड़े हुए उनका इंतजार कर रहे थे। तभी वे 12 लोग सामने आए और जो जो सामान उन्होंने अमन की गाड़ी से लिया था वो एक एक करके अमन को लौटा दिया और अपने किए की माफी मांगने लगे। उन सबकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे।
तारापरी को उन लोगों पर बहुत ही दया आ रही थी। तभी तारापरी ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा चक्कर खाकर वहीं जमीन पर गिर गया था। तारापरी और अमन दौड़कर उस बच्चे के पास गए और उसे उठाकर एक जगह पर लेटा दिया। अपने बच्चे को देखकर उसकी माँ बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, इसने पिछले दो दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए ये बेहोश हो गया है या फिर मर गया है। उनकी हालत देखकर अमन का मन भी पसीज चुका था और तारापरी का भी। तब तारापरी ने कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इनकी मदद करनी ही होगी, चाहे मेरा सच ही क्यों ना बाहर आ जाए। दूसरी ओर अमन भी यही सोच रहा था, चाहे मेरा सच क्यों ना बाहर आ जाए या मिस तारा को मेरे बारे में क्यों ना पता चल जाए, मुझे इन लोगों की मदद करनी ही होगी। वे दोनों एक जैसा सोच रहे थे लेकिन अलग अलग।